समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, श्री कृष्ण जी को बांसुरी बहुत प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में तीन विशेष गुण हैं। पहला गुण है, बांसुरी में कोई भी गांठ नहीं है। ये सिखाती है हमें कि हमारे मन में भी कोई गांठ नहीं होना चाहिए, मन में किसी के लिए भी दुर्भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी विशेषता है बांसुरी की कि बांसुरी जब तक ना बजाओ तब तक नहीं बजती। ये सिखाती है बांसुरी कि जब तक कहा ना जाए हमें नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा गुण है, जब भी बांसुरी बजती है बहुत मधुरता घोल देती है वातावरण में। तो हम भी जब भी बोलें बहुत ही मधुर बोलें, मीठा बोलें, ताकि लोगों के जीवन में भी हम मिठास घोल दें। बांसुरी की ये सुंदर गुण हमारे जीवन में भी मिठास घोलती हैं, हमारे जीवन को भी विशेषता संपन्न बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए इसी सुंदर प्रसंग के साथ आज के इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि अपने आसपास की चीजों को देखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बांसुरी भी जो श्री कृष्ण जी के हाथों में सुशोभित होती है, कितना कुछ सिखा जाए।
देखिए, कहने में बांस की
जी,
और कितनी सुरीली, कितनी मनमोहक, नाट कोई नहीं, सबके चित्त को हर्षाने वाली
जी।
तो बाह्य स्वरूप न देखकर उसका अगर आंतरिक स्वरूप देखें तो मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कईयों ने अपने मन में गांठें लगा ली हैं, दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं, कोई ऐसी चीज मन में बसा ली है जो खाती जा रही अंदर ही अंदर। व्यवहार की बात इसमें आती है, किसी ने कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए हैं, किसी विशेष समय पर ऐसा अपमान कर दिया है, भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है, हार्ट को हर्ट कर दिया है कि गांठ बन गई है और वो खुलती नहीं है। और गांठ, देखिए वो कहावत है ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ फट जाए। अब गांठ पड़ गई तो पड़ गई, जुड़ तो गई, पर अगर मन में गांठ पड़ जाए तो संबंधों में स्वीटनेस कभी नहीं आती। इसलिए मनुष्य को बचना चाहिए और कुछ भी हो जाए उसे भूल कर, उसे हल्का करके फिर से आगे बढ़ना चाहिए। मान लो उससे संबंध अच्छे नहीं भी रह पाते तो भी मनुष्य को अपने मन की गांठ अवश्य खोल देनी चाहिए, उसको लिए न घूमना चाहिए, नहीं तो वो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। जैसे कि जे घर में कहीं चूहा मर गया हो, पता न चल रहा हो, तो बैड बदबू, बैड एनर्जी उसे फैलती रहेगी ना, लोग ढूंढते रहेंगे कहाँ है कहाँ है। मन में कोई ऐसी गांठ जो बैड एनर्जी वाइब्रेट करती रहेगी वो सदा कष्टदायी होगी, इसलिए उसे ढूंढकर उसे ज्ञान और योग के बल से हल्का कर देना चाहिए।
बिल्कुल। लेकिन जब लोगों के साथ हम व्यवहार में आए हैं, किसी ने बहुत 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 बुरा कर दिया है हमारे साथ, हमारे रास्ते में बहुत कांटे बो दिए हैं या हमें बहुत नीचे गिराया है, कभी हमारे लिए शुभ किया ही नहीं है, उसके लिए गांठ बन जाना लाजमी है।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कहना तो सहज है लेकिन गांठें बन रही हैं और बन जाती हैं
और परेशान करती
हैं। और अगर इनसे हमें ऊपर उठना है तो कुछ जीवन में सुंदर धारणाएं मनुष्य को अपनानी पड़ेंगी। जैसे जीवन का एक लक्ष्य बना लें, एक सुंदर लक्ष्य, जैसे मान लो लक्ष्य बना दिया कि मुझे तो खुश रहना है, इस लक्ष्य को लेकर हम चलने लगे तो हमारी खुशी को छीनने वाली, खुशी को कुतरने वाले चूहे अनेक रास्ते में मिलेंगे। लेकिन हमें खुश रहना है इसलिए उन चीजों की परवाह नहीं करना। एक धारणा है हर चीज को लाइटली लेना, ये बहुत ही सुंदर धारणा है जीवन की, जिसको इजी गोइंग नेचर कहते हैं, लाइटनेस कहते हैं, सॉफ्ट नेचर भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर नेचर है जीवन में, सचमुच ये सुख, अमृत, खुशी, मिठास घोल देती है। दूसरी धारणा है कि अपने विचारों को थोड़ा ऊंचा उठा दें, बड़े हम हैं, ये बातें बहुत छोटी हैं। मान लो किसी ने बहुत ही ज्यादा अपमान किया है तो जो ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं उन्हें तो ये याद रखना चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा का भला कौन अपमान करेगा। जैसे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकती अग्नि, वायु इसको सुखा नहीं सकती, वैसे ये भी दृढ़ कर दे मुझ आत्मा का कोई अपमान करता ही नहीं, होता ही नहीं मेरा। और दूसरा भी सुंदर विचार ले लें, मैं तो योगी हूँ, योगियों का भी कभी अपमान नहीं होता, योगी अपमान को भी सम्मान स्वमान में टर्न कर देते हैं। और तीसरी बात, अपने अंदर ये ईश्वरीय खुशी और नशे के रूप में समा लें, तुम्हें तो भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों ने अगर कुछ कर भी दिया हो तो तुम्हारा कुछ घटता नहीं है, स्वयं भगवान इस समय आकर अपने बच्चों को मान दे रहा है। तो ज्ञान और योग पे चलने वालों को ये सुंदर विचार मिलते हैं, जीवन में महानताएं आती हैं, थिंकिंग लेवल जरा ऊंचा उठ जाता है, तो छोटी बातें छोटी रह जाती है, तब गांठ नहीं पड़ती। लेकिन जो मनुष्य बहुत सेंसिटिव है, जो हर बात में बहुत ज्यादा सोचता है, जिसकी कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, माना मुझे बहुत मान मिलना चाहिए, दो लोगों के बीच कोई मेरा अपमान न कर दे, ऐसी कामनाएं है तो बड़ी नेचुरल, ऐसे व्यक्ति को हर छोटी बात माइंड होगी, उसे अपमान फील होगा, भले अपमान हुआ हो या न हुआ हो उसे अपमान फील होगा। जैसे एक व्यक्ति बड़ा है, उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है, वो किसी के घर में जाता है, दूसरे लोग उसे देख के खड़े नहीं होते, कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, उसको बहुत अपमान फील होता है, फीलिंग है ये। और अगर वो व्यक्ति बहुत सॉफ्ट है, ईगोलेस है, तो वो सब बैठे हैं उन्हें कहेगा तुम बैठे रहो बैठे रहो, अरे मैं तो आया हूँ तो क्या हुआ, सब में खुशी का माहौल बना देगा और कोई बैड फीलिंग भी न उसको होगी न किसी को। तो अपने विचारों को थोड़ा ऊंचा उठाना, गांठें अगर पड़ गई हैं खुल जाएंगी, कोई पड़ गई हो तो उसे पास समझ कर, अब उसे रखने से क्या फायदा, गांठ कस देती रहेगी। जैसे शरीर में आजकल जरा सी भी गांठ हो जाए तो डॉक्टर सावधान करते हैं इसे अभी निकाल दो, कैंसर होने का खतरा हो जाता है। तो मन में भी कोई गांठ पड़ी होगी तो मन में भी तो कैंसर करेगी ना। हमारे एक डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई कि जो होल्डिंग नेचर है मनुष्य की, कुछ बातों को पकड़ के रखने के, यही गांठ हो गई ना, ये होल्डिंग नेचर जिसमें है वो व्यक्ति ज्यादा ही बीमार रहता है। और इसका कारण यही है कि वो जो विचार उसने पकड़ लिया है वो बैड एनर्जी वाइब्रेट करता रहेगा, जो ब्रेन में फैलती रहेगी और कहीं ना कहीं बॉडी में फैलेगी, ब्रेन की एफिशिएंसी को भी कहीं ना कहीं नष्ट करेगी, बॉडी में कोई निगेटिव इफेक्ट डालेगी। इसलिए सारे रोग सचमुच मन से ही प्रारंभ हो रहे हैं, भले स्थूल कारण भी होता है, लेकिन स्थूल कारण और मन की वो निगेटिविटी दोनों मिलते हैं, अकेला मन नहीं। मान लो बाहर से, हाँ बाहर से ठंडी तेज पड़ रही है और अंदर भी आइसक्रीम खा ली तो ज्यादा हो जाएगा ना इफेक्ट, ऐसे ही बाहर से कुछ आ रहा है और मन से भी कुछ आ रहा है तो बीमारियां बढ़ जाएंगी।
बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मन की गांठों को हम हल्का कर दें, सरल रहें, विचारों को ऊंचा करें। और राजयोग जैसा आप हमेशा कहते हैं हमारे मन के विचारों को बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ करता है, इसमें मदद करेगा। प्रदीप जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आज मलेशिया से आया है, ये कहते हैं कि ओम शांति ब्रदर सूर्य, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज बी के ईश्वरन सुब्रमण्यम फ्रॉम मलेशिया। I am in Gyan for more than 15 years. I have attended more than 10 Bab Dada's meeting and also have the fortune of attending some of your classes. Bhai, I would like you to teach me how to control diabetic or even cure diabetic using Baba's knowledge, as I have heard from one of your classes regarding the above topic, but it was very general. Subramanyam, Malaysia.
ये सत्य है कि डायबिटीज एक महामारी बनती जा रही है
जी, हमारे देश में तो और भी ज्यादा
फैल रही है, मॉरिशस में तो लगभग सबको हो गई है, अमेरिका में तो 50 साल की आयु के बाद हर व्यक्ति को डायबिटीज की प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना जरूरी कर दिया है, जो स्टोर्स पे फ्री मिलती है सरकार की ओर से। हमारे देश में बढ़ रही है, इसके कारण खान पान, इसका कारण स्ट्रेस, दिनचर्या बहुत बिजी बढ़ता हुआ, टेंशन हो क्या रहा है आजकल इन बीमारियों के पीछे। मुझे कुछ कारण इन सब के दिखाई देते हैं, बाहर पॉल्यूशन बहुत है, भोजन में सब्जी अन्न फ्रूट पानी सब पॉल्यूटेड हो गया, जिस तरह से सब्जियां आदि उगाई जा रही हैं उनमें सार तो रहा नहीं, लेकिन कीटनाशक बहुत डालने के कारण वो जब शरीर में जाते हैं तो अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। एक चीज के निगेटिव थिंकिंग बहुत हो गया मनुष्य का, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर, बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो कम होती जा रही है। और इस कम होने का एक कारण है कि मनुष्य के पास संयम बिल्कुल न रहा, जीवन वासनात्मक हो गया है। वासना ही वासनाएं हैं, काम वासना, सेक्सुअल लाइफ को मनुष्य ने अपना जीवन बना लिया है। इस कारण बॉडी के बहुत सारे पार्ट बहुत वीक होते जा रहे हैं, और डायबिटीज का भी प्रमुख कारण पैनक्रियाज का बहुत ज्यादा एक्टिव न होना। और भी कई कारण हो सकते हैं, किसी का शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही अच्छा न रहा हो, ज्यादा तो डॉक्टर बताएंगे, पर हम तो इतना जानते हैं कि डायबिटीज एक स्लो पॉइजन है जो हार्ट को, लीवर को,
शरीर के किसी भी अंग को,
किसकी आंखों पर उसका असर आ जाता है, ब्रेन पर आ सकता है, कहीं भी उसका असर आके वो उसको किल करने लगेगा, मारने लगेगा। इसलिए दवाइयां बहुत हैं। देखिए एक अनुभव सुनाओ, एक व्यक्ति को 450 शुगर रहती थी, दवाइयों से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो मुझे उसकी टीचर ने बताया, हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक बेल्ट मिलती है जो यहाँ बांध ली जाती है ऊपर, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा से हम खाली पेट। मैंने उसको भेज दी, उसकी बहुत जल्दी डाउन हो गई, बड़ा खुश हुआ। क्योंकि डायबिटीज ज्यादा होना एक नई तरह की टेंशन रहती है। मेरे को भी हुई तो मैंने कुछ प्रयोग किए तो काफी कंट्रोल में रहती है, कोई समस्या नहीं रहती मेरे लिए, बस बॉर्डर पे ही रहती है आगे पीछे।
तो आपने तो कम्प्लीट रहते थे, मैं वैसे आने वाला था कि आपको हुआ तो आपने कैसे इसे ठीक किया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी हमारे दर्शकों।
हमारे डॉक्टर ने चैलेंज किया था कि कोई डायबिटीज को ठीक करके दिखाए, तो मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया था। कोई जब चैलेंज करता है तो इच्छा होती है ना स्वीकार करें, तो मैं इसके पीछे पड़ गया। एक्चुअली पीछे पड़ने की बात है, मैंने कुछ चीजें अपनाई थी। एक था ये जो हमारा प्राणायाम है ना, कपाल भाती, सेकंड उंगली ऐसे दबा कर, सेकंड छोटी से सेकंड, छोटी से सेकंड,
अनामिका,
हाँ ये दबा कर ऐसे, और कपाल भाती करनी थी 200।
अच्छा,
पेट की जो है, तो मैंने कही रोज 500। मैं इसके पीछे पड़ गया
जी।
तो एक तो इसका इफेक्ट,
ये सुबह सुबह है खाली पेट,
खाली पेट
जी जी।
दूसरी चीज मैंने की, इसके लिए मंडूकासन होता है जो वज्रासन पे बैठ के और यहाँ ये रख के झुकना होता है, तो इन पे दबाव पड़ता है।
अच्छा।
वो एक्टिव होते हैं,
मतलब वज्रासन में बैठेंगे और ये पोजीशन है
बस कैसे मोड़ के।
अच्छा, हाथों की,
और ये लगा के झुकना
और झुकना होता है, और कुछ सांस लेना छोड़ना,
सांस तो बाहर निकाल देते हैं, वो तो आप ही निकल जाएगा
जी जी जी।
तीसरा ये पांच बार कर लिया,
पांच बार कर लिया।
तीसरा मुझे अपनी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ही याद आई तब, उसमें भगवान उवाच में हमने सुना है कि सब शक्तियां तुम्हारी हैं, वो तुम्हारे ऑर्डर में चलती हैं। तो मुझे फील हुआ कि अगर शक्तियां हमारे ऑर्डर में चलती हैं तो शरीर के अंग जिनके हम मालिक हैं वो हमारे ऑर्डर में क्यों नहीं चलेंगे। तो मैंने पैनक्रियाज को एनर्जी देना प्रारंभ किया, और एनर्जी देने का वही तरीका, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर राइट हैंड यहाँ रख दिया एक मिनट, ऐसा पांच मिनट किया। मैं तो पांच ही मिनट किया, पर लोग इसको पांच मिनट सवेरे, पांच मिनट दोपहर, पांच मिनट शाम, जिनको ज्यादा है वो कर सकते हैं।
मतलब इसे एक्टिव करना,
एक्टिव करना, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ, बहुत ही अच्छा। और जो खाना पीना है उसमें शुगर को बिल्कुल छोड़ दिया।
लेकिन व्रता जी, मैंने सुना है कि जिनको शुगर होता है उनको और मीठा खाने की इच्छा।
फिर एक चीज और, मैं एक नेचर के सेंटर में गया विजयवाड़ा में, हमारे एक बीके नहीं खोला हुआ, बहुत बड़ा और आधुनिक, उनमें यह है कि आप नमक छोड़ो और भले ही मीठा खाते रहो, शहद खाओ खूब, चीनी तो खैर सभी अवॉइड करते हैं, चीनी और नमक छोड़ दो, बाकी कुछ भी खाओ, फ्रूट खाओ, मीठे तो कुछ नहीं होगा। और हम वहां रहे, उन्होंने हमें 7 दिन फास्टिंग में रखा, और 7 दिन में हमने कम से कम 2 लीटर शहद ले लिया होगा।
अच्छा।
क्योंकि नींबू पानी लेना होता था 7-8 बार सारे दिन में विद हनी। तो उससे हमें डायबिटीज बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि हमारी 80 और 90 के बीच रही। तो एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हम अपने खान पान को ठीक करें। स्ट्रेस मुझे जो हुई थी वो मैं खाने पीने से और किसी से नहीं, मैंने काम ज्यादा ले लिया था अपने ऊपर, फोन बहुत आ रहे हैं, मुझे किचन में भी जाना है, मुझे पार्टियों से मिलना है, मुझे क्लासेज भी करानी है, तो मुझे फील हुआ जब मुझे
की बहुत ज्यादा
अधिक हो गया और मुझे सब करना है
जी, जी,
तो
जी।
मुझे लगा कि ब्रेन पर कुछ स्ट्रेस पड़ा है मेरे, इवन के मुझे नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ये हो गया कि मुझे सवेरे 8 बजे स्नान करना, दोबारा स्नान नहीं कर पा रहा हूँ, लगातार मिलने वाले आ रहे हैं जबकि मैं एक एक दो दो मिनट में ही मिल लेता हूँ सबसे। तो फिर मैंने अपने कार्यों को थोड़ा मैनेज कर लिया, कुछ चीजें छोड़ी कि नहीं आयु भी बड़ी हो गई है तो सब कार्य ब्रेन पे दबाव डाल देना ही जरूरी नहीं है। इन सब चीजों को मैंने अपनाया तो काफी अच्छी मदद मिली। तो मैं इनको कहूंगा वो मन को थोड़ा ठीक करें, परेशान न हो जाएं कि क्या हो जाएगा, डायबिटीज है कुछ नहीं होने वाला हमें, मन को बिल्कुल स्ट्रांग कर दें और सोते समय 5 बार ये संकल्प करके सोएंगे मैं डायबिटीज से पूरी तरह मुक्त हूं, मेरी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं संपूर्ण रूप से हेल्दी हूँ। और ये कपालभाती करें, पैनक्रियाज को एक्टिव करें, एनर्जी दें, पानी भी चार्ज करके पिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ईश्वमान से, और खाने पीने का अच्छा परहेज कर लें, नमक जितना हो सके थोड़ा कम कर ले, मैं ये तो नहीं कहूंगा एक आम व्यक्ति नमक तो नहीं छोड़ पाता, लेकिन थोड़ा लाइट कर ले और सेंधा नमक खाए, घरों में तो सेंधा नमक ही चालू कर लेना चाहिए मनुष्य को। लेकिन हमारे एक डॉक्टर ने, डॉक्टर राजीव शायद थे उनका नाम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लेक्चर दिया करते थे
डॉक्टर राजीव दीक्षित,
राजीव दीक्षित, कि अगर मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया जाए
जी
तो बहुत जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाती है। हमारे राजस्थान में तो मिट्टी के तवे मिलते हैं और मिट्टी के ये सब्जी दाल बनाने का भी, ये दो ही चीज अगर ले लें, हांडी कहते हैं उसे वो और तवा, तो इससे काफी फायदा होगा और निश्चित रूप से इस महामारी को रोका जा सकेगा।
बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी होती चली जा रही है व्रता जी, और ये कहा जाने लगा है कि यदि इसी गति से हमारे देश वाले मीठे होते रहे तो ये डायबिटीज की राजधानी भारतवर्ष बन जाएगी।
राजधानी क्या है, उससे फटाफट मृत्यु होने लगेगी। एक्चुअली इससे ऐसा लग रहा है कि तेजी से डायबिटीज बढ़ती जाएगी लोगों को, और इससे कई अंग वीक होते जाएंगे, लोग अपने जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे। गांव में जहां लोगों को पता ही नहीं चलता, कोई चेकअप ही नहीं कराता, डायबिटीज आदि हो जाती है और लोग बस उनका हार्ट वीक हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस पे ध्यान देना तो
बहुत जरूरी है पता जी। चलिए, बड़ी उम्र वालों को डायबिटीज समझ में ये बात आती है, लेकिन आजकल तो 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चों में भी डायबिटीज देखा जा रहा है, इसका क्या कारण है?
इसके कारण पूर्व जन्मों से लाए, जैसे हेरिडिटरी की डॉक्टर बात करते हैं ना, ये पूर्व जन्मों से चली आ रही बीमारियां, कि डायबिटीज में ही शरीर छोड़ दिया और डायबिटीज के चिंतन में शरीर छोड़ दिया एक्चुअली, कि हाय मुझे बहुत डायबिटीज हो गई। डायबिटिक कॉन्शियस, उसके होने में यदि शरीर छोड़ा तो वो जो लास्ट थॉट थे उनका जीवन पर, अगले जन्म पर, गर्भ में जो बच्चे का शरीर बनता है उस पर गहरा इफेक्ट हो गया और बचपन से बच्चा डायबिटिक। मेरे पास भी ऐसे 2-4 फोन आए लोगों के कि पता चला बच्चा डायबिटिक है।
बिल्कुल बेटा जी, कई लोग जैसे निराश हो जाते हैं इसको लेकर के, जैसे आपने भी कहा कि एक बार डायबिटीज आ गई तो लगता है कि अरे अब तो पूरे जीवन ये चलेगा। आपको क्या लगता है कि डायबिटीज हो गई हमें तो ये क्या पूरा जीवन हमें अब सताता रहेगा या इसे ठीक किया जा सकता
है? ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हमारा पैनक्रियाज एक्टिव हो जाए पूरी तरह से और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे तो काफी हद तक इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि हम चीनी ना खाएं, नमक को थोड़ा कम कर दें और ये आसन आदि एक्सरसाइज थोड़ी करते रहें। और राजयोग जैसे मैंने कहा, इसमें हमें बहुत बल देता है क्योंकि हमारी विल पावर हमारी मन की शक्ति से बहुत बढ़ जाती है, तो कई चीजों को हम बिल्कुल न्यूट्रल कर दें। हमारे यहाँ एक डॉक्टर, स्वयं एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो MD है, मुझे बता रही थी कि मेरी शुगर थी 666 और कहा मुझे पता चला मैं तो मस्त रही, मैं तो मस्ती से जीती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा देखो, मैं सोच रहा था कि इतनी हाई डायबिटीज होने के बाद भी जब तक जिएंगे जिएंगे, मरना है मर जाएंगे, क्या परेशान होने की जरूरत। खुद डॉक्टर है और उसके बारे में बिल्कुल भी वो केयरफुल नहीं है,
तो ध्यान तो देना
चाहिए। मैं इसको पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हरेक ये नहीं कर सकता,
करना भी नहीं,
ध्यान देना चाहिए और अगर वो बढ़ रही है तो तुरंत उसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि इसको कंट्रोल तो रखा जा सकता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे, हमारे यहाँ आबू में रहने वाला एक विदेशी व्यक्ति, उसकी लड़की जब से 7 साल की थी वो यहीं थी, डायबिटिक थी बेचारी, और अब वो काफी बड़ी हो गई, उसकी मैरिज भी हो गई, वो डायबिटिक है लेकिन मजे से जी रही है, और उसके जीने का राज एक ही था कि वो बचपन से खुश बहुत रहती थी, खुश एकदम से, बच्चों को पता भी नहीं होता डायबिटीज वायबिटीज क्या होती है, कुछ पेन आदि तो होता नहीं, तो मन को खुश रखना, अपने को एनर्जेटिक रखना, कार्य में भी लगे रहना, लेकिन स्ट्रेस न लेना, ये परम आवश्यक है। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने लगे तो डायबिटीज काफी कंट्रोल में रहेगी।
दिनचर्या कैसी हो सकती है दाता जी आपके अनुभव से, ताकि इसमें डायबिटीज जो पेशेंट है जो इस प्रकार के, उनको मदद मिल सके?
हाँ नहीं, इसमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दिनचर्या की कोई बात नहीं, थोड़ा सवेर जल्दी उठे, अपने माइंड को चार्ज करें, राजयोग मेडिटेशन करें और ठीक ठीक खान पान खाएं, बस मीठे का ध्यान रखें, तली हुई चीजों का ध्यान रखें, ताकि सिस्टम वीक न पड़े हमारा और एंजॉय करें लाइफ को।
बिल्कुल, मतलब स्ट्रेस ना लें, एंजॉय करें और साथ ही राज्यों का अभ्यास करें। बताते जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है मुंबई से, ये कहती ओम शांति सूर्य भाई जी, मैं मुंबई से रेखा हूँ और पिछले 4 सालों से मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं और ये दोनों ही पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनका नहीं होता है, टीचर्स पड़ोसी घर वाले सभी उसकी हरकतों से परेशान है, ना ठीक से पढ़ता है और बात भी नहीं मानता, अब शब्दों का भी उच्चारण करता रहता है, कैसे मैं उसे ठीक करूं? बच्चों से मम्मियां बहुत ज्यादा परेशान
नहीं, आजकल एजुकेशन का भी तो कंपटीशन है ना, हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन अब से 50 साल पहले तो कुछ थे ही नहीं, अंग्रेजों के समय में तो वो एजुकेट करते ही नहीं थे भारतवासियों को, लेकिन अब जब एक एजुकेटेड होने का एक क्रेज जैसा है, हर व्यक्ति चाहता है वो हाईली एजुकेटेड हो, अगर उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़े पैसे हैं या माँ या बाप किसी अच्छी नौकरी में हैं तो अपने बच्चों को अच्छा कराते हैं। किसान भी अब जागरूक हैं, वो भी अपने कम से कम भाई 1-2 बच्चा तो हमारा अच्छी तरह पढ़कर अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, इससे परिवार का नाम भी होता है और घर में एजुकेशन होने से कई चीजें बिल्कुल अच्छी होती हैं। तो एजुकेशन के इस कंपटीशन से हर व्यक्ति चाहता जरूर है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, लेकिन सब तो इंटेलिजेंट होते नहीं है। देखिए क्लास है, मैं हमेशा कहा करता हूँ अगर उसमें 60 स्टूडेंट हैं तो पहले 10 बहुत अच्छे होंगे, 1 टॉप मोस्ट, सेकंड टॉप मोस्ट और फिर 5-7 फर्स्ट क्लास और फिर 20 ऐसे होंगे जो सेकंड क्लास होंगे और 15-20 थर्ड क्लास और 5-7 ऐसे भी तो होंगे जो पढ़ते नहीं, फेल हो जाएंगे। तो ये तो एक एवरेज सिस्टम ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर भी माँ बाप तो चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे इंजीनियर बने, IIT में जाएं, मेडिकल में जाएं, तो इनके लिए बच्चों को कुछ चीजें इनको सिखानी है। माता जी जैसे ही बच्चों को उठाए तो बच्चे से विशेष रूप से मुख से बुलवाएगी, मैं बुद्धिमान हूँ, 3 बार बोले तब बच्चा चंचल नहीं होगा, जब उसको नींद से उठाया थोड़ी सी मेहनत करके, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मेरा जीवन बहुत नॉर्मल है, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, इस तरह के संकल्प 3-3 बार करें। और जो ये इसका बच्चा चंचल है, जब ये सोया हो तभी ये माँ इसकी ब्रेन को एनर्जी दे दे, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये 3 बार याद करके दोनों हाथ 1 मिनट तक ऐसे कर ले बच्चे के सिर पर और संकल्प करे इसका ब्रेन नॉर्मल हो जाए, वो हाइपर एक्टिव है ना, 5 मिनट सवेरे ही कर दे जब वो उठे उससे पहले ही, और भोजन और पानी में परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए दे उनको बच्चों को, बस शुभ भावनाएं रखेंगी, परेशान नहीं होंगी। अगर माँ परेशान होती है तो माँ से निगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जाते हैं, मान लो माँ बच्चे के लिए बार बार सोच रहे हैं ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, तो ये इस थॉट्स के वाइब्रेशंस बच्चे को जा रहे हैं, शरारती पड़ोसियों के पास जाके भी तोड़ फोड़ करता होगा, शिकायत करेंगे, अपना हर्जाना मांगेंगे, हमारी ये चीज तो होता है,
टीचर्स भी शिकायत करते हैं आजकल की बच्चा आपका ठीक से पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता, तो वो ऊपर से टेंशन हो जाती है।
इसलिए बहुत सिंसियरली एंड सीरियसली ये कुछ प्रयोग करें तो बच्चों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, हो सके इनसे तो आधा घंटा एक टाइम फिक्स करके मेडिटेशन भी करें, राजयोग मेडिटेशन, अपने बच्चों के लिए कि इनका भविष्य सुंदर हो, इनका कल्याण हो, इनके ब्रेन का विकास हो, जो इनका ब्रेन हाइपर एक्टिव है वो नॉर्मल हो, ऐसे संकल्पों से आधा घंटा रोज इस माता को अच्छे वाइब्रेशन योग के बच्चों को देने चाहिए।
व्रत जी, पहले के जमाने में ऐसा होता था और हम कहा भी करते थे कि बच्चे महात्मा का रूप होते हैं, वो बहुत ही शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसा स्वरूप दे दो। लेकिन अब तो महात्मा जी तो दिखाई नहीं देते हैं।
अब महात्मा का दूसरा अर्थ हो गया महातम, जिनके पास बहुत अंधकार है, ऐसे हो गए बच्चे। सब नहीं, बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चरित्रवान। इसलिए इसको समय का इफेक्ट समझकर लाइटली लेना चाहिए और जितना अपने से अच्छा हो। देखिए, मनुष्य कर भी क्या सकता है किसी के लिए, जो हम अच्छे से अच्छा दूसरों के लिए कर पाए बस वही हमें करना चाहिए और चिंताएं नहीं लेनी चाहिए।
बिल्कुल। चलिए प्रता जी, आज डायबिटीज पे और बच्चों पे कितना सुंदर प्रकाश आपने दिया है। मुझे लगता है कि डायबिटीज के जितने भी पेशेंट हैं, आज जो भी चर्चा हुई है, जो भी प्रकाश आपने दिया है, उसे बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, डायबिटीज तेजी से बढ़ती चली जा रही है हमारे देश में और सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसे ये बीमारी हो जाती है वो भी परेशान रहता है कि कभी बहुत ज्यादा हो गई तो कभी बहुत कम हो गई। इसका ज्यादा होना या कम होना दोनों ही बहुत घातक हैं और शरीर के किसी भी अंग को ये प्रभावित कर देता है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक ज्वलंत उदाहरण हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी हैं, जिन्होंने अपनी डायबिटीज को नियंत्रित भी किया और संपूर्ण रूप से अभी जीवन का आनंद पहले भी लेते रहे हैं, अब भी ले रहे हैं। तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। बस हमें तनाव नहीं लेना है, मन को स्वस्थ रखना है, आनंदित रखना है और साथ ही राजयोग, जो हर बीमारी का रामबाण औषधि या दवा है, उसका भी हमें इस्तेमाल अवश्य करना है, क्योंकि ये मन को शक्तिशाली बनाता है। और जहां से हमने शुरुआत की थी कि मन की गांठों को खोलना बहुत जरूरी है, राजयोग मन की गांठों को खोल देता है, जीवन को आनंदित करता है। तो जीवन आपका आनंदित हो, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से